पृष्ठ संख्या 144, अध्याय 5, लखनऊ घराना। दिल्ली में दीर्घकाल तक तबला वादन की कला फलती फूलती रही। स्नेह स्नेह दिल्ली से पूरब की ओर इसका प्रचार होने लगा। इस दिशा में लखनऊ सर्वप्रथम नगर है जहां तबले का प्रवेश हुआ। नवाबी शान शौकत के कारण लखनऊ रंगीन शहर था। वहाँ के नवाब तथा रईस लोग संगीत के प्रेमी थे। संगीत तथा संगीतज्ञों का वहाँ काफ़ी आदर सम्मान होता था। अतः गायक वादक और नर्तकों की भीड़ उस नगरी में सदैव लगी रहती थी। सन 1739 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तान पर नादिर शाह का हमला हुआ। उन दिनों दिल्ली पर मोहम्मद शाह रंगीले का शासन था। क्रूर नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम किया तथा प्रजा में जो आतंक फैलाया, उसका असर बादशाह रंगीले पर इतना गहरा हुआ कि उसे संगीत से विरक्ति हो गई। संगीत के प्रति अपनी अत्याधिक आसक्ति को ही वे नादिर शाह के हमले का कारण मानने लगे। अतः 24 घंटे संगीत में डूबे रहने वाले बादशाह को संगीत से अचानक इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने अपने दरबार में संगीत तथा संगीतकारों का नामोनिशान तक मिटा दिया। नादिर शाह के घोर आतंक और क्रूरता के कारण कुछ कलाकार तो मारे गए और शेष घबराकर अन्य नगरों में पलायित हो गए। इस प्रकार दिल्ली का चहकता दरबार वीरान हो गया। अधिकतर दिल्ली के कलाकार लखनऊ, रामपुर, जयपुर एवं आसपास अन्य रियासतों में जाकर बसने लगे। सांगीतिक दृष्टि से दिल्ली के पतन के पश्चात लखनऊ कलाकारों का प्रमुख केंद्र बना। ख्याल गायकी के प्रचार के साथ साथ उन दिनों वहां ठुमरी तथा टप्पा की गायन शैलियां भी पनप रही थीं। रंगीन तबीयत के लखनवी नवाब और रईस जादे ठुमरी जैसी श्रृंगारिक गायकी के विशेष प्रेमी थे। कथक नृत्य का भी वहां काफ़ी प्रचार बढ़ रहा था। महाराज कालका दीन तथा महाराज बिंदा दीन के द्वारा कथक नृत्य का एक घराना ही बना। उन दिनों संगति के लिए वहाँ पखावज ही एकमात्र प्रमुख तालवाद्य था। किंतु ख्याल की स्वर प्रधान गायकी एवं ठुमरी की नजाकत के लिए पखावज का गंभीर वादन बोझिल सा लगता था। अतः दिल्ली से आए हुए तबला वादकों ने इस अस्थिर परिस्थिति का लाभ उठाया और अपने वादन में ऐसे परिवर्तनों के विषय में गंभीरता से विचार किया जो तत्कालीन संगीत की संगति के लिए उपयुक्त हो। उनका ऐसा प्रयास लखनऊ के वातावरण में खूब सराहा गया और यही मुख्य कारण था कि व्यावसायिक तबला वादकों की दृष्टि लखनऊ पर केंद्रित हुई। इस प्रकार दिल्ली का तबला लखनऊ आया। वहां ख्याल तथा ठुमरी की संगत के लिए तो वह बेहतरीन साबित हुआ, किंतु नृत्य की जोरदार लंबी लंबी पर्णों और चक्रदारों के सामने वह उलझ गया। अतः उन उस्तादों ने दिल्ली के तबले में आवश्यक परिवर्तन किए। पृष्ठ संख्या 145। तबले के प्रसिद्ध लखनऊ घराने के जन्म के विषय में उपलब्ध इतिहास के अनुसार जिन दिनों लखनऊ की गद्दी पर नवाब आसिफुद्दौला आसीन थे, उस्ताद मोदू खां तथा उनके कुछ वर्षों पश्चात उनके अनुज उस्ताद बक्सू खां, जो दिल्ली के उस्ताद सिद्धार्थ खां के पौत्र थे, दिल्ली से लखनऊ आकर बस गए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मोदू खां नवाब हसमत जंग बहादुर के शासनकाल में आए थे। यद्यपि नवाब आसिफुद्दौला का समय तर्कसंगत लगता है। लखनऊ के चौक में स्थित लाल हवेली की कोठी नवाब साहब के उस्ताद मोदू खां को उपहार स्वरूप दी थी। आज वह कोठी उनके वंशजों के हाथ से निकल चुकी है। वहां आज पुलिस विभाग कोतवाली का एक कार्यालय है, किंतु इस कोठी के कारण लखनऊ घराने वाले आज भी अपने आप को कोठीवाल अथवा लाल कोठी की परंपरा वाले कहलाने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। उस्ताद मोदू खां तथा उस्ताद बक्सू खां ने लखनऊ आकर वहां की तत्कालीन सांगीतिक परिस्थितियों का निरीक्षण किया और तदनुसार परिवर्तन करना आवश्यक समझा। उन दिनों लखनऊ में कथक नृत्य का प्रचलन बढ़ रहा था। संगीत की इस विधा के साथ संगति के लिए शुद्ध दिल्ली का बंदबाज उपयुक्त न था, अतः उन्होंने पखावज की वादन शैली एवं रचनाओं का आधार लेकर परिवर्तन करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी नवीन वादन शैली में चाटी से अधिक स्याही का तथा दो अंगुलियों के स्थान पर पांचों उंगलियों का प्रयोग शुरू किया। बोलों के निकास में परिवर्तन किए, चाटी की जगह स्याही और लौ से नाद उत्पन्न करने का प्रयत्न किया तथा गत, परन, टुकड़े, चक्रदार आदि का उसमें समावेश करके एक स्वतंत्र बाज का निर्माण किया, जो न तो दिल्ली के समान बंदबाज था और न ही पखावज की भांति थापियां वाला खुला बाज। इस प्रकार देश के पूर्वी भाग में सर्वप्रथम लखनऊ घराना और पूरब बाज अस्तित्व में आए। ज्ञातव्य है कि पूरब के अन्य घराने इसी घराने से विकसित हुए हैं। पूरब बाज, पूर्व में इसकी चर्चा की जा चुकी है कि तबला सर्वप्रथम दिल्ली से लखनऊ आया। चूंकि भौगोलिक दृष्टि से यह दिल्ली के पूर्व की ओर स्थित है, अतः इस घराने को पूरब का घराना और उसकी वादन शैली को पूरब बाज कहा गया। उल्लेखनीय है कि इसके बाद विकसित फरुखाबाद और बनारस घराने इसी घराने की देन हैं, अतः ये भी पूरब घराने के अंतर्गत आते हैं। पूरब का बाज लव और स्याही प्रधान बाज है। इसकी शैली अधिक जोरदार और गूंज युक्त है। इसमें दिल्ली के समान दो उंगलियों के स्थान पर सभी उंगलियों का प्रयोग प्रचलित है। इसमें गत, टुकड़े, परन, चक्रदार आदि तो बजाए ही जाते हैं और नृत्य के साथ बजाने के लिए विशेष रचनाओं का समावेश किया गया है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पूरब का बाज सर्वांगीय बाज है, तो संगत के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि आज पूरब के तबला वादक चमक रहे हैं। लखनऊ घराने की परंपरा। तबले के इस घराने की उत्पत्ति और प्रगति के पीछे लखनऊ के कला प्रेमी नवाबों का विशेष सहयोग रहा है। नवाब आसुफू दौला के शासनकाल में उस्ताद मोदू खां साहब लखनऊ आए, पृष्ठ संख्या 146, और उनके कुछ वर्ष पश्चात उनके अनुज उस्ताद बक्सू खां भी वहां आ गए। उन दिनों लखनऊ में संगीत का उच्च स्तरीय वातावरण था। देश के प्रमुख संगीतज्ञ एवं नृत्यकारों ने लखनऊ को ही अपनी कर्मभूमि बना रखा था, जिनमें गुलाम रसूल जैसे ख्यालिये और गुलाम नवी शोरी जैसे टप्पा गायक लखनऊ दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठुमरी का भी विशेष प्रचलन हो चुका था, फिर भी अभी तक पखावज का अधिक चलन था। नवाब आसिफुद्दौला के पश्चात नवाब नसीरुद्दीन हैदर का समय आया। नसीरुद्दीन भी संगीत के प्रेमी एवं पोषक थे। उस समय तक उस्ताद बक्सू खां लखनऊ आ चुके थे। वे अपने भाई मोदू खां से उम्र में काफ़ी छोटे थे। ऐसा प्रमाण मिलता है कि इन दोनों भाइयों के स्वभाव में बहुत अंतर था। बड़े भाई मोदू खां सरल एवं उदार हृदय व्यक्ति थे, जबकि छोटे भाई बक्सू खां अभिमानी एवं कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। वे बहुत अच्छा तबला बजाते थे, अतः उसका उन्हें बहुत गर्व था। कहते हैं कि उन दोनों में मधुर संबंध नहीं थे। सांगीतिक दृष्टि से नवाब बाजिद अली शाह का समय सन 1847 ईस्वी से सन 1857 ईस्वी तक माना जाता है। लखनऊ के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके दरबार में सैकड़ों गायक, वादक तथा नृत्यकार थे। नवाब वाजिद अली शाह केवल कला प्रेमी ही नहीं अपितु स्वयं भी कुशल कलाकार थे। उनके समय में लखनऊ का वातावरण अत्यंत रंगीन, विलासी तथा कलामय था। कथक नृत्य के लिए तो यह महत्वपूर्ण समय था। तदुपरांत नवाब साहब को तबले के प्रति भी काफ़ी रुचि थी, अतः उनके दरबार में तबले के विद्वानों एवं कलाकारों का भी आदर सम्मान होता था। इस प्रकार आसिफुद्दौला, नासिरुद्दीन हैदर, हसमत जंग बहादुर, शुजातुद्दौला तथा वाजिद अली शाह जैसे कला प्रेमी नवाबों की कला परस्ती के कारण लखनऊ में संगीत तथा नृत्य कला को विकसित होने का अवसर मिला। सैकड़ों कलाकार जीवनोपार्जन की चिंता से मुक्त होकर कला साधना में लीन हो सके तथा इन्हीं के छत्र छाया में तबले के लखनऊ घराने को उदित तथा विकसित होने का सौभाग्य मिला। उस्ताद मोदू खां के पुत्र जाहिद खां अच्छे कलाकार थे। उनको मोहम्मद करम इमाम ने अच्छा तबला वादक कहा है, जो उनके शिष्ट कलाकार होने का प्रमाण है। दुर्भाग्य से वे कम अवस्था में ही स्वर्गवासी हुए। मोदू खां के प्रमुख शिष्यों में पंडित राम साहेब मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कहते हैं कि उस्ताद मोदू खां अपने छोटे भाई उस्ताद बक्सु खां के व्यवहार से क्षुब्ध रहा करते थे, अतः उन्होंने बनारस से आए कथक परिवार के प्रतिभाशाली किशोर राम सहाय मिश्र को तैयार करने की ठानी। मिश्र जी ने 12 वर्ष तक उस्ताद के घर रहकर तबले की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। गुरु तथा गुरु पत्नी उन्हें पुत्रवत प्रेम करते थे। गुरु पत्नी जिनके विषय में प्रचलित है कि वे पंजाब की किसी बड़े उस्ताद की पुत्री थी तथा तबले की जानकार थी। राम सहाय को उनके उस्ताद की अनुपस्थिति में तबला सिखाया करती थी। इस प्रकार गुरु तथा गुरु पत्नी दोनों ओर से लखनऊ तथा पंजाब घराने की विपुल विद्या राम सहाय को प्राप्त हुई। मोदू खां के शिष्यों में दूसरा नाम उनके भतीजे मम्मन खां उर्फ मम्मू खां का आता है। पृष्ठ संख्या 147। उस्ताद बक्सु खां के 3 पुत्र थे, मम्मन उर्फ मम्मू खां, सलारी खां तथा केसरी खां। कुछ लोग केसरी खां को शिष्य मानते हैं। उनके दामाद तथा शिष्य हाजी विलायत अली खां थे। वे अपने युग के उत्कृष्ट तबला वादक थे। उस्ताद मम्मू खां अपने चाचा उस्ताद मोदू खां की विद्वता से बहुत प्रभावित थे, अतः अपने पिता बक्सु के होते हुए भी उनकी अधिकतर शिक्षा अपने चाचा मोदू खां से संपन्न हुई थी। उस्ताद मम्मू खां लखनऊ घराने के खलीफा माने गए। तबले में धीरकिट शब्द की निकास को स्याही से सरका करके पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन उन्होंने आरंभ किया। उस्ताद बक्सु खां के दूसरे पुत्र सलारी मियां गत वादन में अत्यंत प्रवीण एवं रंग भरने में बड़े कुशल थे। वे इतना खूबसूरत और सुंदर बजाते थे कि लोग कहा करते थे कि तबला वादन में सलारी मियां की 10 उंगलियां रोशन हैं। उनकी प्रशंसा मोहम्मद करम इमाम में भी की गई है। बक्सु खां के दामाद तथा शिष्य हाजी विलायत अली खां थे, जो फरुखाबाद के निवासी थे। हाजी साहब की विद्वता के लिए 2 मत नहीं है। उनके जैसा कलाकार कदाचित ही पैदा होता है। हाजी साहब की पत्नी भी तबले की अच्छी ज्ञाता थी। फरुखाबाद लौटने के बाद हाजी साहब ने अपनी पृथक शैली का निर्माण किया, जो तत्पश्चात फरुखाबाद बाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाजी साहब तथा उनके बाज की विस्तृत चर्चा फरुखाबाद घराने में की जाएगी। कुछ लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि सलारी मियां हाजी साहब के शिष्य थे, किंतु वास्तव में वे दोनों गुरु भाई भी थे और साले बहनोई भी थे। संभव है कि गुरु पुत्र होते हुए भी सलारी मियाँ हाजी साहब से उम्र में छोटे होंगे और उन पर हाजी विलायत अली खां का बहुत प्रभाव रहा होगा, क्योंकि हाजी साहब की अनेक गतों के जवाबी तोड़े सलारी मियाँ ने तैयार किए थे। आज भी तबला वादकों में सलारी मियाँ की जवाबी गतें और चलन अत्यंत श्रद्धा से पढ़े जाते हैं। उनकी वादन शैली पर लखनऊ से अधिक फर्रुखाबाद घराने की शैली का प्रभाव लगता था, जो उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। उस्ताद बख्शू खां के एक शिष्य बेचाराम चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने अपने मूल स्थान विष्णुपुर लौटकर लखनऊ घराने की शैली का प्रचार किया। आगे चलकर वह शैली विष्णुपुर परंपरा कहलाने लगी। तत्पश्चात इस परंपरा को उस्ताद मम्मू खां के एक शिष्य राम प्रसन्न बंदोपाध्याय ने भी आगे बढ़ाया। उस्ताद मम्मू खां के पुत्र का नाम उस्ताद मोहम्मद खां था। मोहम्मद खां भी अपने पिता की भांति यशस्वी कलाकार थे। मोहम्मद करम इमाम ने मम्मू खां के लड़के को मम्मू खां से भी श्रेष्ठ लिखा है। मोहम्मद खां के दो पुत्र थे, मुन्ने खां तथा आबिद हुसैन खां। दोनों बड़े विद्वान थे तथा नृत्य की संगति में भी अद्वितीय थे। उन दोनों ने अपने समय में काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की। उस्ताद मोहम्मद खां नवाब शुजातुद्दौला के दरबारी कलाकार थे, जबकि उस्ताद मुन्ने खां नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के कला रत्न थे। पृष्ठ संख्या 148। मोहम्मद करम इमाम लिखते हैं कि महाराजा कालका विंदा ने नृत्य के साथ लखनऊ दरबार में बख्शू खां के प्रपोत्र मुन्ने खां संगति किया करता था। उस्ताद मोहम्मद खां की मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हुई थी, अतः उनके छोटे पुत्र आबिद हुसैन की मुख्य तालीम उनके बड़े भाई मुन्ने खां से ही संपन्न हुई थी। उस्ताद आबिद हुसैन बड़े विद्वान, परिश्रमी तथा प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। उनका हाथ इतना स्पष्ट और मधुर था कि सुनने वाले उनके वादन में मोहित हो जाते थे। लाल किला गत की रचना उस्ताद आबिद हुसैन खां की देन है। लखनऊ की मेरी म्यूजिक कॉलेज, वर्तमान नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय, की स्थापना के साथ तबले के प्राध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। उनके दामाद तथा भतीजे उस्ताद वाजिद हुसैन खां भी यशस्वी कलाकार हुए। वाजिद हुसैन के पुत्र उस्ताद आफाक हुसैन तथा पौत्र अलमास हुसैन इस परंपरा को आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। उस्ताद आबिद हुसैन के चचेरे भाई उस्ताद नादिर हुसैन खां उर्फ छुट्टन खां भी इस परंपरा के उत्कृष्ट कलाकार थे। वे कुछ समय तक ढाका तथा मुर्शिदाबाद में रहे, जहां उन्होंने लखनऊ के तबले का काफ़ी प्रचार किया। आज भी उनके शिष्य पूर्व बंगाल में मौजूद हैं। उनके प्रमुख शिष्यों में उस्ताद लखनऊ के उस्ताद अकबर हुसैन खां उर्फ बल्लू खां का नाम उल्लेखनीय है। उस्ताद मम्मू खां की पुत्री छोटी बीबी तथा नाती बाबू खां ने भी तबले की शिक्षा मम्मू खां से ही प्राप्त की थी। वे बहुत वर्षों तक कलकत्ता में रहे, वहीं उनका शिष्य परिवार फैला है। उस्ताद मम्मू खां के भतीजों में अल्लाह बख्श, बहादुर खां तथा घसीट खां के नाम आते हैं। उनके दूसरे भतीजे गुलाम हैदर पटना चले गए। उनके शिष्य उस्ताद अली कादर खां ने पटना के सुप्रसिद्ध केशव महाराज ने तबला की शिक्षा ली तथा बिहार में तबले का विपुल प्रचार किया। घसीट खां की परंपरा में छोटे खां, पौत्र सादत अली, प्रपौत्र रजा हुसैन तथा उनके पुत्र जाफर खां तथा अकबर हुसैन उर्फ बल्लू खां हैं। उस्ताद गुलाम हैदर के एक भतीजे अलीगढ़ में थे, जिनका नाम अली रजा था। मेरठ के उस्ताद हबीबुद्दीन ने इनसे भी शिक्षा पाई थी। इस घराने के वंशजों में गुलाम अब्बास खां, उस्ताद नज्जू खां, लाडले खां, हाजी जाकिर हुसैन खां, इरशाद खां, इंतजार खां आदि के नाम से प्रसिद्ध है। उस्ताद मुन्ने खां के पुत्र बहादुर हुसैन खां तथा खम्मन बीबी की औलादें नायाब हुसैन, पौत्र इनायत हुसैन, रजा हुसैन तथा सुल्तान हुसैन नाती आदि तबले के जानकार हैं। लखनऊ घराने के शिष्यों में रहीम बख्श रुग्गा जी, अमाम खां, भैरो प्रसाद बनारस, सुप्पन खां ढाका, मोहम्मद हुसैन मुरादाबाद वाले, रामधन, राम कन्हाई त्रिपुरा, फकीर साहब मनमत नाथ गांगुली कलकत्ता, जहांगीर खां इंदौर, अल्लादिया खां अमरावती वाले, हीरेंद्र कुमार गांगुली कलकत्ता, हीरेंद्र किशोर राय चौधरी मैमन सिंह, मिर्जा आलम नवाब, फयाज खां मुरादाबाद वाले, हबीबुल्ला महबूब मिरजकर पूना, यार रसूल फुलझड़ी खां, नागेंद्र नाथ बसु, देवी प्रसन्न घोष जो बागान, उस्ताद शेख दाऊद खां हैदराबाद, शिशिर शोभन भट्टाचार्य, राय बहादुर केशव चंद्र बनर्जी कलकत्ता, धन्नू उस्ताद गंगा दयाल पांडे पटना आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। पृष्ठ संख्या 149। जिनके प्रयत्न से लखनऊ घराने का वंश वृक्ष विकसित हुआ, इनके अतिरिक्त सभी कलाकारों के नाम आप संलग्न तालिका में देख सकते हैं। लखनऊ घराने के द्वारा अन्य घराने एवं परंपराओं का जन्म। जिस प्रकार तबले के दिल्ली घराने से अजराणा और लखनऊ जैसे दो प्रमुख घराने अस्तित्व में आए, उसी प्रकार लखनऊ घराने से तबले की दूसरे अनेक घराने तथा परंपराएं अस्तित्व में आईं। इसलिए तो यह मान्यता है कि पंजाब को छोड़कर तबले के दूसरे सभी घराने तथा परंपराएं प्रत्यक्ष या परोक्ष में दिल्ली तथा लखनऊ से संबंधित हैं। लखनऊ घराने के प्रवर्तक मोदू खां तथा बक्सू खां से अनेक व्यक्तियों ने तालीम प्राप्त की थी। इनके कुछ कलाकारों ने तथा इनके शिष्य प्रशिष्यों ने कलांतर में अपने नवीन घराने एवं परंपरा की स्थापना की। कुछ कलाकार दूसरे शहर में जाकर बसे, जहां उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। कालक्रम से वह परंपराएं भी उसी नाम से पहचानी जाने लगी। इस प्रकार लखनऊ घराने से जो विस्तार हुआ है वह निम्नलिखित है। उस्ताद मोदू खां से बनारस के पंडित राम साहेब मिश्र ने शिक्षा प्राप्त की थी। बनारस लौटने के पश्चात उन्होंने अपने शहर में बनारस घराने की नींव डाली थी। उस्ताद मोदू खां के छोटे भाई उस्ताद बक्सू खां के शिष्य तथा दामाद उस्ताद हाजी विलायत अली खां फरुखाबाद के रहने वाले थे। उनसे फरुखाबाद घराना अस्तित्व में आया। उस्ताद बक्सू खां के एक शिष्य पंडित बेचाराम चट्टोपाध्याय से विष्णुपुर की परंपरा फैली। बाद में यह परंपरा मम्मू खां के शिष्य विष्णुपुर निवासी राम प्रसन्न बंदोपाध्याय से और भी सुदृढ़ हुई। लखनऊ के उस्ताद मम्मू खां तथा फरुखाबाद के हुसैन बख्श से तालीम प्राप्त करके उस्ताद अता हुसैन ढाका चले गए, जहां उन्होंने अपनी अलग अलग परंपरा फैलाई। वे कुछ समय विष्णुपुर में भी रहे थे। पूर्व तथा पश्चिम बंगाल में तबला के प्रचार में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उस्ताद बक्सू खां के नाती बाबू खां से कलकत्ता में तबले की परंपरा फैली। हाजी विलायत अली खां के शिष्य उस्ताद चूड़िया इमाम बख्श से भटौला की परंपरा फैली। पृष्ठ संख्या 150। लखनऊ घराने की विशेषता। यह सर्वविदित है कि दिल्ली के मूर्धन्य कलाकारों तथा लखनऊ घराने का सूत्रपात हुआ। स्वाभाविक है कि वे कलाकार दिल्ली बाज की संपूर्ण विशेषताएं अपने साथ लाए, परंतु लखनऊ की सांगीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनको अपनी वादन शैली में परिवर्तन करना पड़ा। दिल्ली का बंद तबला लखनऊ में पखावज और नृत्य के प्रभाव से खुला और जोरदार हो गया। यहाँ चाटी की अपेक्षा स्याही का प्रयोग तथा लव से ध्वनि के निर्माण की प्रथा है। तीसरा, इस बाज में दो अंगुलियों के स्थान पर पांचों अंगुलियों का उपयोग किया जाता है तथा बाएं पर अंगूठे द्वारा मीड़, घसीट या घिस्सा उत्पन्न करने की प्रथा घरानेदार वंशजों में देखी जाती है। बाएं के चमड़े को कलाई के नीचे के हिस्से से हल्का सा घिसकर दो जो मधुर ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे घिस्सा, घसीट या मीड़ कहते हैं। चौथा, लखनऊ घराने के कायदे दिल्ली और अजराने के कायदों से भिन्न होते हैं जो अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। यहाँ कायदे की अपेक्षा विविध लयकारी युक्त टुकड़े, नौहक्का, गत, परन, विविध प्रकार के चक्रदार एवं गतें, फरद, सात्विक परने, स्तुति अथवा श्लोक परने इत्यादि खूबसूरत बंदिशें मुख्यतः होती हैं, जो इस बाज की अपनी विशेषता है। इस बाज में तगन, दिंग, नग नग, किटतक, धेत्ता, धड़ान, घिड़ान, घिनतड़ान, धित, घिड़नग, घेतान, घेतितान, कड़ान, धेट धेट, क्रध तेट आदि बोल समूहों का प्रयोग अधिक देखा जाता है। धेट धेट धागे तेट, क्रध तेट धागे तेट शब्द का प्रयोग तो लखनऊ घराने का एक प्रतीक सा बन गया है। छठवां, कथक नृत्य में प्रायः कलाकार कुछ बंदिशों को पहले पढ़ता है, फिर उसे अंग संचालन द्वारा प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इस घराने के तबला वादक कभी कभी अपनी कुछ रचनाओं को पहले मुंह से पढ़ते हैं, फिर उसे तबले पर निकालते हैं। यह तबले पर नृत्य का अस्पष्ट प्रभाव प्रमाणित करता है। सातवां, लखनऊ पर पंजाब घराने का भी कुछ प्रभाव है। कहते हैं इस घराने के प्रवर्तक उस्ताद मोदू खां की पत्नी पंजाब के किसी उस्ताद की पुत्री थी और उन्हें भी तबले की बहुत अच्छी जानकारी थी। मोदू खां को अपने ससुराल से कुछ गतें उपहार दहेज में मिली थीं। आज भी लखनऊ तथा बनारस घराने के कुछ लोगों के पास ऐसी गतें सुरक्षित हैं जिन्हें वे दहेज गत के नाम से पुकारते हैं। ठुमरी, आठवां, ठुमरी गायन शैली के जन्म और विकास का मुख्य केंद्र लखनऊ रहा है। ठुमरी के साथ संगति करने में लगी लड़ियों का प्रयोग अनिवार्य होता है। यही कारण है कि लखनऊ की वादन शैली में लगी लड़ियों का नया काम जुड़ गया जो उन्होंने लोकवाद शैली से ग्रहण किया गया था। पृष्ठ संख्या 151। लखनऊ घराने की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत हैं जो घराने और बाज की विशेषताओं को प्रकट करती हैं। कायदा तीन ताल में, धिट 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 धागे नधिन धागे तिट, धिट धागे नधा तिट, धिट धागे तीना के न तिट, तिट तिट तागे नतीन न तागे तिट, धिट धागे नधा तिट, धिट धागे धीना के न, धिट 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 धागे नधिन न धागे तिट, धिट धागे नधा तिट, धिट धागे तीना के न तिट, तिट तागे तिट, नतीन न ताके तिट, तिट धिट धागे नधा तिट, धिट धागे धीना के न। पृष्ठ संख्या 152 पे गत त्रिताल में दर्जे की लय में गत दिया गया है। पृष्ठ संख्या 153 पे लखनऊ गत त्रिताल में है। पृष्ठ संख्या 154 पे टुकड़ा दिया गया है एवं लखनऊ घराने की परंपरा है।